प्रकरण 8 कर्ण। मेरी सभी आशाओं आकांक्षाओं पर तुमने पानी फेर दिया, किस लिए किया तुमने कवच कुंडलों का दान? इस दान से दानवीर के रूप में त्रैलोक में तुम्हारी कीर्ति का डंका बज गया होगा, परंतु अंगराज इसी दान से वीर के रूप में समर्थों के राज्य का दाव आज तुम्हारे प्रतिकूल पड़ा है। कवच कुंडलों के बिना कर्ण वैसा ही है जैसे फन के बिना भुजंग, अयाल के बिना सिंह, शिखर के बिना हिमालय। अब युद्ध में अर्जुन के सामने तुम कैसे खड़े हो सकोगे? मेरे कानों के कटे हुए निचले भाग को देखकर राजा दुर्योधन का हृदय तिल तिल कर टूट रहा था। मेरे सामने वह निरंतर आहत व्याघ्र की तरह चक्कर काट रहा था। कवच कुंडलों पर ही मेरा पराक्रम अवलंबित था, तुम क्या यह समझते हो? राजन, कवच कुंडलों के बिना मैं अर्जुन का अंत करूंगा। मैं उसे सांत्वना देने के लिए जाने क्या क्या कह रहा था, परंतु मेरे मन में भी दूर कहीं असमर्थता की टिटहरी कर्कश्वर में टिटी आ रही थी। सामर्थ्य के बिना योद्धा अर्थात सुवादांत के बिना हाथी, मेरे कवच कुंडल मेरी सामर्थ्य थे। कीर्ति के कठिन सोपान पर चढ़ने के लिए मैं उनका त्याग कर बैठा था। कवच कुंडलों को संभालना कहने वाले पितामह को क्या उत्तर दूंगा? किसी भी परिणाम की आशंका से मेरा मन कंपित नहीं हो रहा था, प्रत्युत मेरे मन को अपने कृत्य पर अभिमान ही हो रहा था। उसको शब्दों में बांधकर दुर्योधन को समझा देना संभव नहीं था। भाषा कितने भी समृद्ध क्यों न हो, किंतु मन के सभी भावों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। दुर्योधन का राजनीतिक मन भावना की तीव्रता को समझ ही नहीं सकता, वह व्याकुल होकर चक्कर काट रहा था। कर्ण है, तुम्हारे सामर्थ्यशाली बनने का केवल एक ही मार्ग अवशेष है। बीच में ही रोक कर मोटी भावों को ऊपर तानते हुए उसने जल्दी जल्दी कहा, कौन सा? मैंने आश्चर्य से पूछा। ब्रह्मास्त्र प्राप्ति का। किसके पास है वह बताओ राजन, मैं उसके लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। कर्ण, मेरी इच्छा है कि तुम हम सबके लिए इस ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लो, वह तुम्हें मिले या मुझे, बात एक ही है। मेरी दृष्टि में तुम्हें एक ऐसे धनुर्धर हो जो ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वथा योग्य हो। श्वेत शुभ्र सुदृढ़ सुवादात सदा बलवान हाथी को ही शोभा देते हैं। मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, इस बात को यदि तुम इतनी तीव्रता से अनुभव कर रहे हो तो फिर मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं उसको अवश्य प्राप्त करूंगा। इस संबंध में तुम्हारी क्या योजना है बस इतना बता दो। इसके लिए तुम्हें गुरु द्रोण के पास जाना होगा। हस्तिनापुर में एकमात्र द्रोण ही ब्रह्मास्त्र विद्या जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र भगवान परशुराम ने ही उन्हें यह विद्या दी है, इसीलिए तुमको गुरु द्रोण के पास ही जाना चाहिए। राजन, यह तुम क्या कह रहे हो? जिन्होंने लक्ष लक्ष नगरजनों के सम्मुख मेरे मन पर अपमान के धधकते हुए तप्त अंगारे रखे, मैं विवश होकर उन्हीं के शरण में जाऊं? जिनके हृदय में इस कर्ण के प्रति ममता का एक शब्द विशेष नहीं, उनके आगे नतमस्तक होकर खड़ा हूं? इंद्र को याचक के रूप में द्वार पर खड़ा कराने वाला मैं द्रोण जी के द्वार पर भिक्षुक बनकर खड़ा रहूं? यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ कर्ण, जीवन कुंभकार के चाक जैसा है। काल कुंभकार का रूप धारण कर इस चाक को मनमानी गति से घुमाता रहता है। वहां किसी की इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसीलिए तो काल रूपी वह कुंभकार चाहे जैसे घट तैयार कर लेता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जबकि अपमान को एक ओर रखकर कर्तव्य का निर्वाह करना ही पड़ता है। तुम यदि आज इस बात से इनकार कर दोगे तो क्या होगा? इस दुर्योधन के जीवन में भी वह एक पराजय मानी जाएगी। मैं शकुनी मामा को तुम्हारे संबंध में वचन दे आया हूँ, तुमसे बिना पूछे ही। क्या वचन दिया है तुमने उनको? मेरे लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास जाकर ब्रह्मास्त्र अवश्य सीखेंगे, यदि वे नहीं गए तो मैं स्वयं जाऊंगा, परंतु उस समय कर्ण और दुर्योधन के संबंध टूट चुके होंगे। राजन, क्या यही कसौटी बनाई है तुमने मेरे लिए? तुम्हारे प्रेम के लिए मैं समय आने पर त्रैलोक्य को भी ठुकरा सकता हूँ, परंतु उन द्रोण के द्वार पर हाथ जोड़कर मैं कैसे खड़ा हूँ? कर्ण एक बार मरण स्वीकार कर सकता है, परंतु अपने स्वाभिमान को अपने व्यक्तित्व को वह कभी नहीं मरने देगा। कैसे विचित्र जाल में उलझा दिया है तुमने मुझे, क्या करूँ मैं? नहीं, तुमको यदि इतनी पीड़ा हो रही हो तो मैं द्रोण के पास जाने के लिए तुमसे बिल्कुल आग्रह नहीं करूंगा, परंतु ध्यान रखना अंगराज कर्ण दुर्योधन जैसे प्रेम करता है वैसे ही कठोर कटुता भी जानता है। अब भविष्य में अंगराज कर्ण आर्यावर्त के एक सामान्य राजा के रूप में ही दुर्योधन के सामने आएंगे, मित्र के रूप में नहीं। चलता हूं मैं। ठहरो राजन, मैं जाने को तैयार हूं। अपने लिए जो मैं तीन कालों में कभी नहीं करता उसको केवल तुम्हारे लिए मैं करूंगा। जिन्होंने मुझे सदैव उपेक्षा के खारे समुद्र में प्राण घुटने तक डुबोया उन्हीं द्रोण के द्वार पर एक शिष्य के रूप में मैं खड़ा होऊंगा, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारी और अपनी मित्रता के लिए। आज ही राज ज्योतिषियों को बुलवा लो और जाने के लिए शुभ मुहूर्त दिखवा लो। वह ब्रह्मास्त्र है, शुभ घड़ी देखकर जाना ही अच्छा है। साधुवाद कर्ण। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर आनंदातिशय से दबाया। उसकी उस पकड़ में मेरे प्रति उसकी भावना तीव्रता से प्रकट हो रही थी। उसकी आंखें आनंद से चमक रही थी। मेरी ओर वह भावों के अभिभूत होकर एकटक देख रहा था। उसकी कंजी आंखों से कृतज्ञता की ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे मन के गर्भगृह में केवल ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र शब्द चक्कर लगाते हुए उल्टे सीधे नाचने लगे। अश्वत्थामा से मैंने यह सुना था कि वह अस्त्र भयंकर मानव संहारक है। मेरा मन उल्टे सीधे विचारों के चुंगल में फंस गया। किस लिए इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण हुआ होगा? वह केवल मानव संहारक ही नहीं था, बल्कि उस अस्त्र से समस्त दृश्य वस्तुओं का अक्षरशः सर्वनाश हो सकता था। इस रमणीय सृष्टि के निर्माण में लाखों वर्ष लग गए होंगे, परंतु इस ब्रह्मास्त्र से वह सृष्टि क्षण भर में ही अस्तित्वहीन हो जाएगी। प्रकृति ने सुख से जीने के लिए मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बुद्धि दी थी, या अपना नाश करने के लिए? क्या ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना चाहिए? यह प्रश्न यदि मुझसे पूछा गया होता तो मैंने यही उत्तर दिया होता कि नहीं, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव ही शांतिप्रिय था। स्वयं जिए, सम्मान से जीवित रहें और अन्य को जीने दें, यही मेरी वास्तविक विचारधारा थी। समय आने पर मैं अपनी मृत्यु स्वीकार कर सकता था, परंतु केवल स्वार्थ हेतु जीने के लिए ही अन्यों को पैरों तले कुचलने की बात मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यही मेरी मूल प्रकृति थी, परंतु मेरी इच्छा का प्रश्न अब शेष ही नहीं रहा था। वह अस्त्र अर्जुन के पास था, मुझको सदैव संतप्त करने वाले प्रतिद्वंदी के पास। यदि मैं उसको प्राप्त न करता तो अपने प्रतिद्वंदी को मैं कैसे रोक सकता था? जीवन के सभी समस्याओं का समाधान तत्व ज्ञान की चिकनी भूमि पर ही खड़े होकर नहीं किया जा सकता। उसके लिए कभी कभी व्यवहार के कठिन काले पाषाण पर खड़ा होना पड़ता है। मेरे लिए अब केवल एक ही अटल मार्ग शेष रह गया था, और वह था ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेना। मेरी इच्छा हो या न हो, आसपास की परिस्थिति ने ही मुझे इसके लिए विवश कर दिया था। काल ने मुझे तैयार किया था। काल सदैव एक क्रूर व्याघ्र की तरह होता है। मानव जाति के अनेक रम्य सपनों को वह सदैव सहज भाव से अपनी पीठ पर मृगिया की तरह डालकर तीव्र गति से दौड़ता रहता है। क्या निष्पन्न होगा इस ब्रह्मास्त्र से? सचमुच ही क्या उपयोग है इन विध्वंसक अस्त्रों का? लेकिन कौन देगा इसका उत्तर? सभी तो काल के दास हैं। इस अस्त्र से कितना कल्याण होगा? जहाँ सभी कुछ जलकर राख हो गया हो, वहाँ कैसा सुख और शांति भी कैसी? मेरा मन ऐसे प्रश्नों के प्रहारों से एकदम उद्विग्न हो गया। दुर्योधन को स्वीकृति देकर मैंने कोई भूल तो नहीं की? हजारों बार यह प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा, परंतु एक बार भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मुझको अश्वत्थामा की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। उसके मुख से निःसृत अमृतमय चार शब्द सुनकर एक अवर्णनीय अनुपम समाधान प्राप्त होता था। दुविधाग्रस्त मनोदशा में उसका सहज स्फूर्त तत्वज्ञान मुझे सदैव धैर्य प्रदान करता आया था। मनुष्य भावनाओं पर जीता है, यह बात सत्य हो सकती है, परंतु वह केवल भावनाओं पर ही जीवित नहीं रहता। तत्वज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो समय आने पर उसे अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। मैंने ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए जो निर्णय किया था, वह तत्वज्ञान का ही एक भाग नहीं था क्या? व्यवहार या तत्वज्ञान? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिर पर से राजमुकुट उतारा, देह पर से राजवस्त्र उतारे, एक सादा वस्त्र पहनकर कंधे पर उत्तरीय डालकर अश्वत्थामा के पास जाने के विचार से युद्धशाला के मार्ग से पैदल ही चल दिया। मैं राजा के वेश में नहीं था, और रथ जोतने के लिए भी मैंने नहीं कहा था। यह देखकर दास दासियां सब मेरी ओर आश्चर्य से देख रहे थे। विचारों की तंद्रा में चलते चलते कब मैं युद्धशाला के समीप आ गया, इसका भी मुझे पता न चला। भीतर परिसर भूमि में तीन चार पर्ण कुटियां थीं। उनमें अश्वत्थामा, गुरु द्रोण और कुछ ऋषि कुमार रहते थे। वैसे मैं जब तब अश्वत्थामा के पर्णकुटी में आता जाता रहता था, परंतु कार्यवशात ऐसे समय वह सदैव हंसता हुआ मेरा स्वागत करता था। भूमि चंपा का फूल जैसा उसका स्वभाव चारों ओर से आनंद उत्पन्न करने वाला था। गुरु द्रोण सदैव एकाकी एक पर्णकुटी में रहते थे। उनकी वह पर्णकुटी मध्यभाग में ही थी। उनके पास ही अश्वत्थामा की पर्णकुटी थी। सदैव की भांति मैं उसकी पर्णकुटी के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उस सजीव दृश्य को देखकर ब्रह्मास्त्र के संबंध में मेरे अनेक तुच्छ विचार ऐसे ही तितर बितर हो गए जैसे पवन से मेघ विकीर्ण हो जाते हैं। कठिनता से समझ में आने वाले जीवन, मुक्ति, आत्मा, संयम आदि विषयों पर सदैव बात करने वाला, मुझे सदैव आकाश की तरह विशाल लगने वाला अश्वत्थामा एक छोटे बालक की तरह 8-10 दिन पहले जन्मे एक मोहक पछड़े से तुतली भाषा में बातें करता हुआ स्वयं को भूल गया था। उस बछड़े के चबेदार पूंछ को वह बीच बीच में अपने स्वच्छ गालों पर फेर लेता था। मुझको देखते ही वह गंभीरता से उस बछड़े से बोला, ऋषभ पुत्र, अपने यहाँ कौन आए हैं, देख लिया? वचन पूर्ति के लिए देवराज इंद्र को कवच कुंडलों का दान करने वाले हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं ये, सूर्यदेव के लाडले शिष्य हैं। द्वार पर आए हुए प्रत्येक अतिथि का ये स्वागत करते हैं, तुम भी उनका स्वागत करो। लेकिन भाई, केवल सूखा स्वागत करने में काम नहीं चलेगा, अपने भाग का आधा गरम गरम दूध आज तुमको इन्हें देना होगा, तैयार हो ना? उसने उस बछड़े के कान के पास अपना मुंह ले जाते हुए उससे पूछा। उस बछड़े ने भी अपनी बेर जैसी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर लगाते हुए क्षण भर को कान खड़े कर लिए। पूंछ का सुकुमार जुब्बा ऊपर उठाकर उसे एक मोहक झटका दिया और हम्मा कहकर वह जोर से रंभाया, मानो अश्वत्थामा की भाषा वह समझ ही गया हो। उसके कथन को उसने स्वीकृति दे दी थी। अश्वत्थामा उसके रंभाने से अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने बछड़े कपाल पर की सुकुमार मृदु रोम राज को अपनी लंबी उंगलियों से क्षण भर खुजाया। वह उन दोनों की ओर मुग्ध होकर देखता रहा। मुझे वे चेतना के तो विलोभनीय रूप ही प्रतीत हुए। क्षण भर को विचार आया कि यदि मैं भी ऋषि कुमार हुआ होता तो मेरा जीवन भी क्या ऐसा ही न होता, अश्वत्थामा जैसा। उसके पर्णकुटी में मृगाजीन पर बैठकर हमने अनेक विषयों पर गप्पे मारी। बातों ही बातों मैंने सहज ब्रह्मास्त्र का उल्लेख किया। तत्क्षण ही वह अत्यंत गंभीर होकर बोला, कर्ण, जीवन केवल श्वेत कृष्ण रंग की पट्टियों से चित्रित वस्त्र नहीं है, इस पर मटमैले रंग की कुछ घनी घटाएं भी हैं। उसने क्या कहा यह मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया, परंतु मैंने अपनी उत्सुकता बढ़ने नहीं दी। उसने दूध लाकर दिया। दूध पीकर उससे अनुमति लेकर पर्णकुटी से बाहर निकला। बाहर उज्ज्वल स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई थी। राजभवन की ओर आते आते मेरे मन में विचार आया कि जीवन केवल श्वेत कृष्ण रंग की पट्टियों से निर्मित वस्त्र नहीं है, कभी कभी उस पर मटमैले रंग की घनी घटाएं भी पड़ जाती होंगी, परंतु उस वस्त्र की किनारी निश्चय ही रूपाली होनी चाहिए, क्योंकि उस स्वच्छ शीतल ज्योत्सना में समस्त चराचर पर रूपाली चादर चढ़ी हुई थी। धरती रूपी बालक चांदनी के सरोवर में जी भरकर डुबकियां लगा रहा था। धीरे धीरे चरण रखता हुआ चंद्रिका का जी भरकर आनंद लूटता हुआ बड़ी देर बाद में राजभवन के महाद्वार के पास आया। द्वारपाल ने मुझको बिना पहचाना ही रोका, कौन है? सिर उठाकर मैंने उसकी ओर देखा। मेरे कानों के कटे हुए निचले भाग हिल उठे। उनको देखते ही उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। मैं कुछ समझ सकूं इससे पहले वह मेरे चरणों पर लूट गया और आकुल स्वर में बोला, महाराज क्षमा करें, आज आपके इस वेश के कारण मैं आपको बिल्कुल ही पहचान न सकूं। कुछ न कहकर उसके भुजदंड पकड़कर मैंने ऊपर उठाया। पास ही पड़ा हुआ उसका भाला उसके हाथ में पुनः दे दिया। क्षण भर उसके कंधे को थपथपाकर मैंने महाद्वार के भीतर पैर रखा। यूं ही मेरे मन में आया, जीवन केवल श्वेत कृष्ण रंगों की पट्टियों से रंगा हुआ वस्त्र नहीं होता है, कभी कभी उस पर मटमैले रंग की घनी घटा भी होती है, उसकी रूपाली किनारी भी होती है, और ऐसी किनारी का एक आध निकला हुआ धागा यूं ही बाहर लटकता रहता है उस पागल द्वारपाल की तरह। प्रातःकाल मुझको शोर से पता चला कि ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए गुरुद्रोण के पास जाने का शुभ मुहूर्त राज ज्योतिषियों से पूछकर राजा दुर्योधन ने निकलवा लिया है। सौभाग्य से वह रविवार ही था। संध्या समय गोधूली बेला के मुहूर्त में मुझे उनके पास जाना था। अब शायद भविष्य में गुरुद्रोण के साथ युद्धशाला में ही मुझे रहना पड़े। मेरी अनुपस्थिति में अंगदेश के सभी राजव्यवस्था दुर्योधन ने स्वयं देखने का निश्चय कर लिया था। हमारी यह योजना मेरे दुर्योधन तथा शोण के अतिरिक्त अन्य किसी को ज्ञात नहीं थी। 2. रविवार का दिन उदित हुआ। भोर के समय से ही मैं गंगा के जल में खड़ा था। प्रातःकाल से दोपहर तक मेरा मुख पूर्व की ओर था। दोपहर बाद मैंने उसको पश्चिम की ओर मोड़ा। दोपहर के बाद जैसे सूर्यदेव नीचे की ओर ढलने लगे, मैंने शांतिपूर्वक आंखें बंद कर ली। निमिलित नेत्रों के सम्मुख तेजस्वी किरणों का अपार समुद्र फैला हुआ था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, तेजस्वी प्रकाश और निस्तब्ध नीरवता। इस असीम जगत की दो ही बातें मुझे सत्य प्रतीत होती थी, एक तो अनादिकाल से अपने दिव्य प्रकाश से चराचर को विभाषित करने वाले सूर्यदेव और दूसरी उनकी प्रकाश किरणों से अणु अणु तक प्रफुल्लित होती आई यह धरती, असंख्य स्वरूपों में सुसज्जित पुरातन धरती, सूर्यदेव और धरती, धरती और सूर्यदेव। इन दोनों के बीच में कौन था? दोनों को जोड़ने वाली एक प्रकाश किरण या धरती पर मिट्टी का केवल एक कण? विचारों के चक्र घूम रहे थे, जीवन निर्माण का उद्देश्य ढूंढ रहे थे। आंखों के आगे वह तेजस्वी प्रकाश धूमिल होता जा रहा था। यह प्रतीत होते ही मैंने आंखें खोली। पश्चिम क्षितिज पर पर्वत शिखरों के उस पार परशु के आकार की एक कला आकाश में खड़ी थी। किनारे पर आर्द्र बालुका में दुर्योधन मेरी राह देखता हुआ खड़ा था। वह कब आया था और कितनी देर से खड़ा था भगवान जाने। उसके हाथ में फलों से भरा हुआ एक थाल था, उसमें दूध भरा एक बड़ा पात्र भी था। उसे देखते ही मेरा मन मित्र प्रेम से भर आया। मेरे लिए फलों का थाल हाथों में लेकर खड़ा रहने वाला वह हस्तिनापुर का युवराज है। क्या इस बात को कोई भी सच मान सकता था? कितना सचेत और तत्पर था वह। ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए हम दोनों जो प्रयत्न कर रहे थे उसका पता किसी अन्य को न चले, इसलिए उसने फलों का थाल उठाने के लिए भी किसी दास को साथ नहीं लिया था। उसके इस निश्चल प्रेम का साक्षी कौन था? केवल गंगा ही। जल से बाहर आया, किनारे पर रखा हुआ सूखा वस्त्र वायु से उड़ गया था। पास पहुंचते दुर्योधन मेरे हाथ में थाल देता हुआ बोला, कर्ण पाले फलाहार करके दूध पी लो, प्रातःकाल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैंने उसके हाथ से थाल ले लिया। एक मित्र के रूप में वह मुझे वटवृक्ष की तरह ही विशाल लगा। एक कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ वीर एक क्षुद्र सुतपुत्र के लिए हाथ में थाल लेकर घंटों तक गंगा के निर्जन तट पर प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहा था। दुर्योधन को बुरा करने वाले लोग वज्र मूर्ख हैं। सच्चे अर्थों में वह वीर है और मित्र तो है ही। मैंने थोड़े ही फल खाकर दूध पिया। इसी बीच मेरे दूर रखे हुए वस्त्र को दुर्योधन ले आया। मुझे तत्क्षण छोड़ के स्मृति हो आई। देह पर के भीगे वस्त्र बदले दुर्योधन ने अपने कंधे पर का उत्तरी मेरे कंधों पर डाल दिया। मुझसे रहा न गया। मैंने उससे कहा, राजन तुम अब वापस जाओ, मैं ब्रह्मास्त्र अवश्य प्राप्त करूंगा, विश्वास रखो, यह कर्ण का वचन है। उसने एक बार मेरी ओर देखा, उसकी घनी भौं में क्षण भर को जहाँ की तहाँ फड़क उठी। अस्त होते हुए सूर्यदेव की एक भोली भटकी किरण उसके मुख पर पड़ रही थी। उस किरण में उसकी रक्तवर्णी मुद्रा एक विचित्र ही आनंद से दमक रही थी। उसने अपने पुष्ट हथेलियों से मेरे कंधे पकड़ लिए। क्षण भर उसको जोर से हिलाकर कुछ बिना कहे ही वह लौट गया, परंतु उसकी निस्तेज आंखें स्पष्ट रूप से मुझसे कह रही थी, जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वह मुड़ा और राजभवन की ओर चल दिया, नीचे बालों में अपने दृढ़ पैरों को गाड़ता हुआ धीर गंभीर भाव से। राजभवन के मार्ग पर उसकी लंबी विशाल आकृति पश्चिम की ओर धीरे धीरे क्रम से छोटी होती गई। दृढ़ पैरों की एक स्पष्ट रेखा दूर तक नीचे आर्द्र बालों में अंकित होती गई। मैंने मन ही मन धीरे से कहा, दुर्योधन, कर्ण जिस दिशा में चल देता है उसको अपनी बनाकर छोड़ता है, निश्चिंत रहो। गुरु द्रोण की पर्णकुटि की ओर मैंने पैर रखा। मन शांत और गंभीर था। आकाश में कारण्डों पक्षियों के इक्का दुक्का जोड़े कलकल करते हुए किनारों पर बच्चा वृक्षों पर बने नीड़ों की ओर लौट रहे थे। चारों ओर संध्या छाया फैली हुई थी। मैं युद्धशाला की दिशा में गुरु द्रोण की पर्णकुटि की ओर जा रहा था। उस मार्ग में अनेक टेढ़े मेढ़े मोड़ थे। जीवन भी ऐसे ही मोड़ लेते हुए जाने वाली पगडंडी है, मुझको ऐसा ही प्रतीत हुआ। मेरे जीवन में आज का यह मोड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दुर्योधन के लिए मैं शिष्य के रूप में द्रोणाचार्य जी के द्वार पर खड़ा होने जा रहा था। सचमुच ही जीवन यात्रा में किस मोड़ पर किससे भेंट हो जाएगी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और इन भेंटों से क्या क्या निष्पन्न होगा यह बताना तो और भी असंभव है। 4 दिन पहले इंद्र से भेंट होगी और वे कवच कुंडलों का दान मांगेंगे। आज इस बात को भला किसने सोचा था, परंतु वह हुआ था। उस घटना के कारण ही आज मुझे गुरु द्रोण के द्वार पर खड़ा होना पड़ रहा था। विचारों में डूबा हुआ मैं गुरु द्रोण की पर्णकुटी के सामने आया। संध्याकाल की नीरव निःशब्द शांति सर्वत्र छा गई थी। युद्धशाला के चारों ओर पाषाण निर्मित प्राचीर की दरारों में कहीं झींगुर लय से किरकिर कर रहे थे। कुछ भूले भटके पक्षी अब भी नीड़ों की ओर लौट रहे थे। पर्णकुटी में शांति थी। एक कोने में अग्निकुंड था, उससे उड़ने वाली तप्त चिंगारियां पर्णकुटी की विरल भित्तियों के कारण बाहर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाहर ही खड़ा रहा। मुझे अखाड़े का वह दिन स्पष्ट रूप से याद आया। वह प्राण लेवा अपमान अब भी मेरे मन के कुंड में कहीं न कहीं ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। वह अब क्षण प्रति क्षण उमड़ उमड़ कर आने लगा। मनुष्य एक बार सुख और आनंद के क्षणों को भूल सकता है, परंतु दुख और विशेष रूप से अपमान के क्षणों को तो वह अत्यंत प्रयत्न करने पर भी नहीं भूल पाता। अपमानित मन का अर्थ है अविरत तड़पन। जिन गुरु द्रोण ने एक बार चाहे जाने ही सहस्त्रों नगरजनों के सम्मुख मुझे अक्षरश ठकुराया था, क्या उन्हीं के पास विवश होकर फिर जाया जाए? स्वाभिमान की बलि देकर क्या झूठ मूठ को हंसा जाए? छी, जीवन यदि एक मनमौजी बालक नहीं है तो और क्या है? बालक हाथ में लगे खिलौनों से इच्छा अनुसार खेलता है, पर जब मन में आता है तभी फेंक भी देता है। इसी प्रकार जीवन भी मनुष्य को इच्छा अनुसार घुमाता रहता है, जहाँ चाहता है वहाँ फेंक देता है। क्या ऐसा एक भी मनुष्य इस जगत में होगा जिसके हाथ में अपने जीवन की संपूर्ण बागडोर हो? संभव ही नहीं। मनुष्य पराधीन है। वह निश्चय रूप से किसके अधीन है यह नहीं बताया जा सकता, परंतु वह किसी न किसी के अधीन है अवश्य। मनुष्य रूपी इस गुड़िया को न जाने कौन घुमाता है, और यह अखंड तथा अविरल प्रयत्न किस लिए हो रहा है वह भी कुछ समझ में कुछ बताया नहीं जा सकता। क्या यह केवल जीने के लिए हो रहा है? हो सकता है कि ऐसा ही हो, परंतु मनुष्य को ही जीने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों होती है? इस तीव्र इच्छा के वशीभूत होकर ही क्या मैं गुरुद्रोण के द्वार पर खड़ा हुआ हूँ? आह, मैं अपने लिए नहीं आया, मुझको अपने परम प्रिय मित्र के मनोरथ पूर्ण करने थे। जो अपने लिए जीता है वह कैसा मनुष्य? दूसरे के सुख के लिए मुझे अपने अभिमान का आज शांत मन से होम करना था। कभी कभी अपमान को एक ओर हटा देना पड़ता है। यदि उसको पूर्ण रूप से एक ओर हटा देना संभव न हो तो कुछ समय तक तो उसे चुपचाप निगलना ही पड़ता है। निश्चय करके पर्णकुटी के बंद किवाड़ को बाएं हाथ से भीतर धकेल कर मैंने पर्णकुटी में पैर रखा। मेरे जीवन में यह पहला अवसर था कि मैं इस पर्णकुटी में आया था। गुरुद्रोण एक व्याघ्र चरम पर आंखें बंद किए थे, पद्मासन लगाए शांत बैठे हुए थे। मेरे पैरों की तथा किवाड़ की आवाज़ सुनकर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। मैंने झटपट आगे बढ़कर उनको वंदन किया। कैसे भी क्यों न हो, वे अब मेरे गुरु होने वाले थे। कौन है? पर्णकुटी में रखे मिट्टी के दीपक के प्रकाश में मेरी मुखमुद्रा अच्छी तरह दिखाई न देने के कारण उन्होंने ग्रीवा ऊँची कर पूछा। मैं कर्ण हूँ, मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया। मेरे हाथ जुड़े हुए ही थे, अंतरतम में असंख्य यातनाएं हो रही थी। परिस्थितियों द्वारा घेरी हुई, जीवन द्वारा सम्मुख रखी गई व्यवस्था की, कर्ण इस असमय में ब्रह्मास्त्र विद्या सीखने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों में रहकर उसको प्राप्त करूँ। ब्रह्मास्त्र विद्या? यह विद्या केवल क्षत्रियों के लिए है, यह क्या तुम जानते नहीं? उनके सम्मुख यज्ञ कुंड में शिनगारियाँ तड़तड़ कर रही थी। मैं भी अब क्षत्रिय ही हूँ। मैं अंगदेश का अभिषिक्त राजा हूँ, दिग्विजय वीर हूँ। अपने कवच कुंडलों का दान मैंने देवराज इंद्र को किया है। गुरुदेव, तुम क्षत्रिय नहीं हो, अंगदेश के राजा हो जाने के कारण क्या अपने को क्षत्रिय समझते हो? व्याघ्र का चर्म पहनने से कोई गर्दभ को व्याघ्र नहीं कहता। सभी नगरजन अब मुझको क्षत्रिय ही मानते हैं। दिग्विजयी होने के कारण मेरे सम्मुख प्रणत होते हैं, दानवीर कहकर मेरा आदर करते हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं समझते, वे समझते हैं दुर्योधन के राजदंड को। तुम दुर्योधन की दृष्टि में क्षत्रिय हो सकते हो, परंतु जग की दृष्टि में एक सुतपुत्र ही हो, हीन हो, क्षुद्र हो। गांव के परिसर में रहकर भूखने वाले सारमेय को वनराज की समता कभी नहीं करनी चाहिए। जाओ। उनका एक एक शब्द शूल के अग्रभाग की तरह मेरे हृदय में चुभ रहा था। मेरा मन ऐसे क्रंदन कर रहा था जैसे कटीली डंडी से पीटा जा रहा हो। कौन है सिंह और कौन है सारमेय? इसकी कसौटी क्या है? केवल कुल? कुल की श्रेष्ठता का वही पुराना मैला कुचैला ध्वज आज भी हाथ में नचाते हुए ये लोग किस किस को पैर तले रो देंगे? मेरी एक एक नस सर सर तप्त होने लगी। फिर भी संयम से स्वयं को संभालता हुआ मैं बोला, मैं सुतपुत्र हूँ, यह क्या मेरा दोष है? किस कुल में जन्म लिया जाए या क्या मनुष्य के हाथ में है? मैं एक शिष्य के रूप में सदैव आपके चरणों के पास रहूंगा। ब्रह्मास्त्र के लिए आप जो कहेंगे वही महान पराक्रम करूंगा। शिष्य बनकर आपकी सेवा करूंगा। तुम सुतपुत्र हो, तुम्हारे हाथ में ब्रह्मास्त्र देने का अर्थ है मरकट के हाथ में मशाल देना। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके अहंकार से भरे हुए उन क्रूर शब्दाघातों से मेरा मन टूक टूक हो गया। किसी ने यदि खड़ग के एक ही प्रहार से मेरे मस्तक को धड़ से अलग कर दिया होता तब भी मुझे इतना दुख न हुआ होता। इतनी असह्य यातनाएं न हुई होती। सहनशीलता सद्गुण हो सकता है, किंतु विवश स्तब्धता की क्या दुर्गुण नहीं? मेरे तप्त तो मस्तक की नसें तन उठी, आंखों में जैसे यज्ञकुंड प्रज्वलित हो उठे। सारी शक्ति को एकत्रित कर मैं जैसे तैसे चिल्लाया, गुरुद्रोण आप यह बात किससे कह रहे हैं? मैं सुतपुत्र हूँ, यही आप पुनः पुनः चिल्लाकर कहना चाहते हैं क्या? तो फिर आज से मैं ही गरज गरज कर संसार से कहूंगा कि मैं सुतपुत्र हूँ, मैं सुतपुत्र हूँ। जन्म देव के अधीन है, परंतु पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। मैं आपके ब्रह्मास्त्र की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, और यदि आवश्यकता पड़ी भी तो मैं एक सुतपुत्र के रूप में ही प्राप्त करूंगा, स्वतंत्र रूप से बिना आपके। पर्णकुटी के किवाड़ पैर से धकेल कर मैं दुखी हो बाहर आया। कुटी के बाहर अश्वत्थामा आकर न जाने कब खड़ा हो गया था। हमारा मर्म भेदी वार्तालाप उसने सुन लिया होगा। अपने हाथ दोनों हाथ फैलाकर मुझे रोकने लगा। मैंने उसके हाथों को झिड़क दिया। अब मैं किसी का तत्व ज्ञान नहीं सुनना चाहता था। कर्ण, ठहर ठहर कर्ण, कहता हुआ वह आर्त स्वर में चिल्ला रहा था। उसके शब्द मात्र मेरे कान में घुस रहे थे, उसका अर्थ कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अपमान अपमान अपमान, मन आक्रोश से भरा था। मेरा जीवन क्या केवल अपमान ही है? कर्ण, सूतपुत्र सूतपुत्र कहकर तेरी घोर अवमानना कर यह संसार क्या तुझे घोट घोट कर मार ही देगा? संसार में सुतपुत्र कहलवाने के लिए ही क्या तेरा जन्म हुआ है? आह, यदि मैं सुतपुत्र हूँ तो फिर मुझे ये शब्द ऐसे क्यों लगते हैं जैसे किसी ने हृदय में बाण मार दिया हो। मैंने एक बार अपमान सहन कर लिया है, इसका संसार ने क्या अर्थ लगाया? मुझे चाहे जब छेड़ा जा सकता है, चाहे जो मन में आए वह कहा जा सकता है। संसार यही चाहता है क्या? आज संसार कर्ण के संबंध में आखिर क्या सोचता है? वह हीन है, क्षुद्र है, स्वाभिमान नाम की कोई वस्तु उसके पास है ही नहीं, उसका अपना कोई स्थान नहीं है। क्या सब यही समझते हैं? मेरे मस्तक में प्रश्नों के असंख्य रथ मनमाने दौड़ने लगे। शरीर का रक्त सनसना कर तप्त हो उठा था। छाती में बाण लगे हुए कृष्ण मृग की तरह मैं सुन्न मन से राजभवन की ओर तीव्र गति से चला जा रहा था। चारों ओर अंधकार था, जीवन पर से विश्वास नष्ट कर देने वाला अंधकार, प्रकाश के असंख्य किरणों को पचाकर शेष रह जाने वाला कालकिट अंधकार, अपने हाथ में काल की काली सुइयां लेकर काले धागों से काले वस्त्रों को अखंड कालिमा निर्माण करने वाला कालकिट अंधकार। मेरे हृदय में अपमान भरा था, आसपास किट काला अंधकार था। अंधकार और अपमान, अपमान और अंधकार, मेरे प्राण क्षण प्रति क्षण घुटने लगे। आसपास रात्रि के अंधकार रूपी सम्राट के सहायक होकर झिंगुरपुर शक्ति लगाकर चिल्ला रहे थे, ये काले घृणित प्राणी क्षुद्र कीट, ये भी आज मुझे सुतपुत्र सुतपुत्र कहकर चिढ़ा रहे थे। आज जग ही उल्टा हो गया है क्या? प्रत्येक ने यथाशक्ति कर्ण को पीड़ित करने का ही प्रण कर रखा है। अपमान की वास्तविक पराकाष्ठा कब होती है? जिस समय वह पहली बार सहन कर लिया जाता है, उसी समय। जिसने किसी भी कारणवश एक बार अपमान सहन कर लिया, उसने अपने व्यक्तित्व की जीवित मरण की चिता की नींव स्वयं ही रख दी। भविष्य में वह पराक्रम के कितने पर्वत खड़े क्यों न कर दे, परंतु संसार की दृष्टि में उनका मूल्य शून्य ही रहता है। जग उसकी ओर अवमानित तथा राज्य की त्याज की दृष्टि से देखा करता है। आह, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हृदय को दग्ध कर देने वाली इस व्यथा को किससे कहूँ? अपमान, 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 पग पग पर अपमान। मैंने यह सहन कैसे कर लिया? सचमुच मैं जीवित हूँ या अप्रेतवत हो गया हूँ? चारों ओर से शब्दों के और विचारों के घनाघात मेरे मस्तिष्क पर हो रहे थे। अंतरात्मा व्याकुल थी, मस्तक सुन्न हो गया था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पीछे मुड़कर देखने की इच्छा नहीं होती थी। जिसके वस्त्रों में आग लग जाती है वह मनुष्य घबराई हुई स्थिति में जैसे नाक की सीध में दौड़ता जाता है, वैसे मैं भी नाक की सीध में भागा चला जा रहा था। मेरा मन चल रहा था, मेरा कुल मुझको असह्य बना रहा था। मैं सुतपुत्र हूँ, किस लिए बना मैं सुतपुत्र? इससे तो जन्म ही न लेता तो क्या बिगड़ जाता? अरे यह क्या जीवन जो घोर कलंक लिए हुए है, यदि विधाता ने पासे न फेंके होते तो यह जीवन इतिहास क्या सुना रह जाता? किस लिए मैंने सूत के घर में जन्म लिया? ठीक है, जन्म लिया सो लिया। मुझे घोड़े प्रतिरोध के प्रति आकर्षण होने के बजाय इन शस्त्रों के प्रति आकर्षण क्यों लगता रहा है? व्यंगराज भी किस लिए हुआ? इस हस्तिनापुर में ही क्यों आया? अरे यह क्या वीरों का नगर है, जिसकी न्याय अन्याय के प्रति रुचि होती है, वह क्या वैसा नगर है? गुरुद्रोण जैसे वृद्ध विषभ से मन की और किस महत्ता की अपेक्षा अब की जाए? काल रूपी विशाल पुरुष से मार खा खा कर जिनका वृद्ध मन नीरस हो गया हो, वे अब जगत को क्या दान देंगे? मेरे धधकते हुए मन से उत्तेजक विचारों की ज्वालाएं बाहर निकल रही थी। पैरों के नीचे ढेलों के रौदता हुआ मैं राजभवन की ओर चला जा रहा था। मैं दिग्विजय नहीं था, एक सर्वमान योद्धा भी नहीं था, था एक सुतपुत्र, केवल सुतपुत्र, रथ की धूली के धूल के समान सुतपुत्र। जीवन को श्रीफल की मधुर उपमा देने वाला अश्वत्थामा मुझे महामूर्ख लगने लगा। जीवन क्या कभी श्रीफल जैसा हो सकता है? और जैसा कि मैं आपको सदैव बताता आया हूँ, तदनुसार वह समरांगण भी नहीं है, क्योंकि समरांगण में तो केवल सामर्थ्य का मूल्य होता है। पागल अश्वत्थामा, जैसा कि तुम कहते हो, जीवन ओस की बूंद जैसा तो निश्चय ही नहीं है। जीवन केवल एक दावानल है, किसी के द्वारा किसी भी तरह प्रज्वलित, किसी ने किसी को जला देने वाला और कभी न कभी अपने आप ही बुझ जाने वाला, वही दावानल आज मुझे दग्ध कर रहा है। मेरे इस विशाल देह के कवच कुंडल अब नहीं है तो क्या इस देह की बस राख ही बनेगी? नहीं, अब नहीं हो सकता। मैं दग्ध नहीं होऊंगा, नष्ट नहीं होऊंगा, मैं ब्रह्मा से प्राप्त करके ही रहूंगा। बौखलाई हुई सारिकाएं जैसे सर्प का पीछा करती हैं, वैसे ही झंझावाती विचार मेरा पीछा कर रहे थे। उसी दशा में मैं राजभवन के महाद्वार पर आया। दुर्योधन अब भी मेरी राह देखता हुआ वहां खड़ा था। उसे देखते ही मेरा मन सुन्न हो गया। क्या उत्तर दूं मैं उसे? उसने मुझे रोककर उत्कंठित होकर पूछ ही लिया, कर्ण क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? राजन, आर्य स्त्री अपना वैधव्य अपने मुख से नहीं कहा करती। सैनिक योद्धा अपना अपमान अपने मुख से नहीं कहते। जाने दो मुझे। मैंने उसके हाथ को भी झटका दिया। मुझे हाथ आज किसी के भी प्रति कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। जल के चक्रवाती भ्रमर में पड़े हुए सूखे तिनके की तरह मन एक ही विचार के चारों ओर निरंतर घूम रहा था। सूत पुत्र, अपमान सामर्थ्य की कसौटी पुरुषार्थ। अपमान? कर्ण, तुम जैसे बलदंड और दिग्विजय वीर का अपमान किसने किया, क्यों किया? मेरी बाहें कसकर पकड़कर उसने जोर से हिलाते हुए उसने बाहों की कमान तानते हुए पूछा। कौरवों के वंदनीय गुरुदेव ने, आचार्य द्रोण ने। क्यों किया, कैसे किया, मुझसे कुछ भी मत पूछो। जगत के कटु सत्यों से मेरे प्राण अब घुटने लगे हैं। इस समय तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो। उसके हाथों की पकड़ को मैंने अंगुलियों से छुड़ाया। तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ, परंतु इससे तुम उद्विग्न हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? जिस ब्रह्मास्त्र के लिए आचार्य द्रोण ने तुम्हारा अपमान किया है, वह ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर तुम्हें उनका ऋण चुकाना ही होगा। कर्ण का कर्णपन केवल इसी में है, यह ध्यान रखना। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह बोला, उसे तो मैं प्राप्त करूंगा ही। इसके लिए मैं साक्षात भगवान परशुराम के पास महेंद्र पर ही जाऊंगा। परंतु इस समय पल भर को भी मुझे यहाँ मत रोको। अपने मन क्षोभ का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और धड़ाधड़ राजभवन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। चढ़ते समय उत्तरीय कंधे पर से सरक कर नीचे सीढ़ियों पर गिर पड़ा, परंतु उसको उठाने के लिए मेरी इच्छा नहीं हुई। पैरों के तलवे तप्त हो गए थे, वे सीढ़ियों के अत्यंत शीतल स्पर्श को अनुभव कर रहे थे। तप्त तलवे उन चिकने पत्थरों के शीतल फर्श से क्षण भर को तो शीतल हो रहे थे, परंतु मेरा जलता हुआ मन, जलता हुआ नहीं धधकता हुआ, वह कैसे शांत होगा, उसको सांत्वना कौन देगा? मैं महल में आया, किवाड़ बंद कर लिए। मैं पूर्ण एकांत चाहता था, एकांत ही अब मुझे शांत कर सकता था। परंतु क्या सचमुच ही उससे मन को शांति मिल सकती थी? अपमानित मन की स्वस्थता एकांत में बिल्कुल ही उध्वस्त हो जाती है। अस्वस्थ मन के नगाड़े पर तड़ तड़ करने वाले निरर्थक विचारों की डंडियां जैसे मुझे क्षण प्रति क्षण अशांत बनाने लगी। विचारों के अविरत मंथन से केवल एक ही निर्णय पक्का हो रहा था, दृढ़ हो रहा था, ब्रह्मास्त्र, महेंद्र पर्वत, भगवान परशुराम, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेने वाला समर्थ कर्ण, शक्तिशाली कर्ण, सुपुत्र सही परंतु सामर्थ्यशाली सुपुत्र कर्ण, परशुराम का शिष्य कर्ण। 3. दूसरे दिन किसी से मिले बिना केवल शोण को बताकर वायुजीत पर आरोहण हो हस्तिनापुर से निकलते समय मेरे मन में केवल परशुराम के विषय में विचार चक्कर लगा रहे थे। कैसे होंगे वे? बहुतों के मुख से उनका जो वृत्तांत सुना था वह प्राण कपा देने वाला था। क्षत्रिय द्वेष्टा, शीघ्र कोपी तथा दृढ़ाग्रही, ऐसे ही सबने उनका वर्णन किया था। श्री कृष्ण ने मामा का वध इसलिए किया था कि वह अन्यायी था, परंतु परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध किया था पिता की आज्ञा थी इसलिए। वे पितामह के तो धनुर्वेद के गुरु थे और 21 बार कार्तवीर्य के 100 पुत्रों का विनाश करने के लिए उन्होंने हाय हाय राजाओं को सहज पराजित कर दिया था। अंत में इतना पराक्रम करके प्राप्त किया हुआ राज अपने गुरु कश्यप ऋषि के चरणों पर दुंदुभी की डंडी की तरफ फेंक कर वे महेंद्र पर्वत पर आश्रम स्थित हो गए थे। ऐसे सुनते ही भयावह लगने वाले महापुरुष के पास मैं जा रहा था। मन उनकी काल्पनिक मूर्ति रेखांकित कर रहा था, परंतु वह ठीक तरह सध नहीं रही थी। घोड़ा महेंद्र की ओर दौड़ रहा था। जिन मार्गों से जाना था उन पर दिग्विजय काल में जा ही चुका था, इसलिए कोई साथी न लेकर मैं केवल अकेला ही चल दिया। मार्ग में पांचाल, काशी, पूर्व दर्शाण आदि राज्य पड़ते थे। किसी भी देश के राजनगर में रुकने की अब इच्छा नहीं थी। किसी मंदिर में ठहरा जाए, विश्राम किया जाए और फिर मार्ग आक्रमण करते समय यथाशीघ्र महेंद्र पर्वत पर पहुंचा जाए, यही मैंने निश्चय किया। महेंद्र पर्वत के कलिंग राज्य में होने के कारण मेरे सामने समस्या जटिल हो गई थी। राजा भानुमंत सहित सभी नगरजन मुझे वहाँ अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए संध्याकाल की धूमिल वेला में मैं उनके राज्य में प्रवेश करने वाला था। कोई विश्वस्त नगरजन देखकर वायुजीत को उसके अधीन किए बिना महेंद्र पर चढ़ जाना मेरे लिए असंभव नहीं था। प्रवास के इस प्रकार योजना बनाते बनाते मैं पांचालों के राज्य में आया। कापिले नगर से गंगा किनारे सुदामन की समाधि मुझे आकर्षित करने लगी, परंतु यदि किसी ने मुझे वहाँ देख लिया तो पांचाल राज द्रुपद को सूचना दे देगा और मेरी आगे की यात्रा रुक जाएगी। उनका स्वागत और आदरातिथ्य स्वीकार करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। मन महेंद्र पर्वत के दर्शनों के लिए अत्यधिक आतुर था, ब्रह्मास्त्र के लिए तड़प रहा था, इसलिए किसी को पता न चले ऐसी स्थिति में मैं पांचाल देश छोड़ने वाला था। फिर भी कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के पांचाल संदेह भरी दृष्टि से मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे थे। कानों के कटे हुए निम्न भाग को देखकर नकार सूचक सिर हिला देते। देह पर जो राजवस्त्र थे वे अन्य लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लेंगे यह सोचकर उनको एक सन्यासी को देते हुए मैंने उसके वस्त्र मांगे। अपने भगवा वस्त्र मेरे हाथों में देता हुआ वह बोला, इन वस्त्रों में ही कहीं मेरी आसक्ति अटकी तो नहीं रह गई है? यह परीक्षा लेने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लो ये वस्त्र लो और अपने उन मूल्यवान राजवस्त्रों को गंगा में अर्पण कर दो, जाओ। उसने भिक्षा की झोली का वस्त्र लज्जा रक्षण के लिए अपनी कटी में लपेट कर मेरे हाथ में अपना भगवा अंगोछा दे दिया। उसको देह पर धारण करते समय मेरा मन उसके उदात्त विचारों से दब सा गया। उसका आदर रखने के लिए कापिले नगर छोड़ते समय मैंने अपने राजवस्त्र गंगा को अर्पण कर दिए। मन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं थी, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं था। देह पर भगवा वस्त्र था, ऊपर नीला आकाश था, सामने महेंद्र का मार्ग। कापिले नगर छोड़कर काशीराज की ओर चलने लगा। अब मैं दिग्विजयी सेनापति नहीं था, मेरे पीछे लक्ष लक्ष योद्धा नहीं थे, हाथी घोड़ों को चित्कार करने वाले हिन हिनाने वाले पथक नहीं थे। इतना ही नहीं, भार बने हुए कवच कुंडल भी अब मेरे शरीर पर नहीं थे। था वह भगवा वस्त्र, शांत मन, सिर पर नीला आकाश। काशी राज्य की सीमा के अंतर्गत प्रयाग आया। वह वृशाली का नगर था, परंतु मुझको नगर में जाना नहीं था। वायुजूत को पानी पिलाने के लिए गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिकोण संगम पर उसे लाया। लौटते समय ठीक उसी स्थान पर वायुजूत रुका जहाँ वृशाली से प्रथम भेंट हुई थी। वहाँ विशाली नहीं थी, शोर नहीं था, फूटा हुआ घड़ा नहीं था। उसको पहली बार देखते हुए मेरे मन में अबोध भावना की जो अद्भुत खलबली मची थी वह नहीं थी, सब कुछ निशांत शांत था। हाँ, अपवाद स्वरूप एक विचार तीव्रता से मन में झांक गया। विशाली के उस फूटे घड़े का वह टुकड़ा यदि मेरे पास होता तो मैंने जहाँ से उसे उठाया था उसी स्थान पर त्रिवेणी संगम को प्रणाम करके हल्के हाथों से पुनः जोकाते हुए रख दिया होता। स्मृतियों के सभी द्वार बंद करने का प्रयत्न मैं कर रहा था, परंतु सफल नहीं हो रहा था। उनसे जूझते जूझते काशीराज छोड़ दिया। पूर्व दर्शाण देश पीछे जाते ही महान नदी के उस पार स्थित पूर्व सागर के सानिध्य में बसा हुआ कलिंग देश आया। सुप्रिया का देश होने के कारण वस्तुतः उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए था, परंतु वह लग नहीं रहा था। संपूर्ण नगरी को एक ओर छोड़कर समीपवर्ती मार्ग से एक दिन सूर्यास्त के समय शांत वातावरण में महेंद्र की पाद भूमि में आया। उसके सुनील शिखरों के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो गया। मस्तिष्क में विचारों का बवंडर रुक गया। अब सब कुछ भूल जाना है। वह अखाड़ा है, वह स्वयंवर, वह द्युत, वह दिग्विजय, वह दान सत्र, वे कवच कुंडल, सब कुछ भूलने के लिए मन ही मन निश्चय किया शिष्य के रूप में परशुराम के आश्रम के सामने खड़ा होने के लिए। उसे निश्चय से परंतु विनम्रता से पर्वत शिखर पर चढ़ना है। कंधे पर हल रखे लौटने वाले कृषक के दर्शन से वायुजीत का प्रश्न अब सुलझ जाएगा, यह सोचकर मन निश्चिंत हो गया। पर्वत के चरणों में कृषि कर्म करके जीवन यापन करने वाला वह श्रमजीवी वायुजीत की देखभाल अच्छी तरह कर सकता था। आसपास लहलहाती घास में चरने को छोड़कर उस पर दृष्टि रख सकता था। कृषक वर्ग, मेरे आने तक मेरे इस अश्व की देखभाल तुम कर सकोगी क्या? मैंने उसको रोक कर वायुजीत की पीठ पर थाप मारते हुए प्रश्न किया। वायुजीत की धवल पीठ क्षण भर सिहर उठी, सघन केशों की पूछ हलचल कर उठी। कौन हो तुम? कृषकवर ने मेरा भगवा वस्त्रों की ओर देखा तथा कटे हुए कानों की ओर देखते हुए पूछा। मैं वह कर्तन हूँ। मेरे इन कटे हुए कानों के कारण तुम मुझे सरलता से फिर पहचान सकोगे। सन्यासी हो, लाओ अपना घोड़ा, मैं संभाल लूंगा। उसने वायुजीत की बलगा अपने हाथ में ले ली। प्रामाणिकता के साथ निभाने वाले उस एकनिष्ठ पशु की पीठ मैंने दो बार थपथपाई। उसके आल के शुभ्र केशों की अंगुलियों को सहलाते समय मेरा अविचल मन द्रवित हो उठा। जाओ सुखी रहो, मैंने उससे भी विदा ली। सूर्यास्त की दीर्घ सुनहली किरण में महेंद्र की खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगा। शाल, किंशुक, पुन्नाग, तमाल, सतोना, दंडड़ी आदि वृक्षों पर बने अपने नीड़ों में पहुंचने के लिए चित्तर, सारंग, लटवाक, चंडोल, चक्रवाक आदि के झुंड पंख चलाते हुए कोलाहल करते लौट रहे थे। ढलान पर पशुओं को चराकर लौटने वाले गोपाल गायों के घंटानाद के साथ बांसुरी पर आलाप ले रहे थे। समस्त चराचर विश्रांति के लिए आतुर हो उठा था। सन्यासी रुको, पीछे से कोई मुझे ही पुकार रहा था, इसलिए मैं ठहर गया। मेरे जैसे भगवा वस्त्र पहने हुए एक मानवीय आकृति धीरे धीरे आगे सरक रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम? समीप आते उस व्यक्ति ने पूछा। शायद वह एक आश्रम शिष्य था, मुझसे कुछ अधिक वयस्क। भगवान परशुराम के आश्रम की ओर। बिना परिचय के पुकारने वाले उस आश्रम शिष्य की ओर आश्चर्य से देखते हुए मैंने उत्तर दिया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उन्हीं का शिष्य हूँ मैं, मेरा नाम है अकृत व्रण, चलो साथ ही चलें। दोनों उसने मेरे कानों की ओर देखते हुए कहा, हम दोनों ही चढ़ाई करने लगे। इसलिए आए हो तुम हमारे आश्रम की ओर, भगवान के दर्शन के लिए? उसने चढ़ते चढ़ते पूछा। नहीं, केवल दर्शन के लिए नहीं, अध्ययन के लिए भी आया हूँ, शिष्य के रूप में। शिष्य के रूप में? तुम ब्राह्मण कुमार हो ना? भगवान की प्रतिज्ञा है, ब्राह्मण कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी को भी वे शिष्य नहीं बनाते हैं। परंतु तुम कौन सी विद्या सीखने के लिए आए हो? ब्रह्मास्त्र, मैंने उत्तर दिया। परंतु मेरी आशाओं पर पानी फिर जाएगा क्या? यह प्रश्न मन में घूम रहा था, मैं ब्राह्मण कुमार नहीं था। ब्रह्मास्त्र? तब तो तुम निश्चय ब्रह्म कुमार हो गए। व्यर्थ मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया, परंतु तुम्हारे कानों का निचला भाग कटा हुआ क्यों हुआ? उसने पुनः प्रश्न किया। उसके ज्यों का त्यों वहाँ छोड़कर दौड़ता हुआ चढ़ाई चढ़कर पुनः वायुजीत पर आरूढ़ हो सीधा हस्तिनापुर को चल दूँ, क्षणभर को मेरे मन में आया। परंतु ब्रह्मास्त्र के बिना मेरा वापस हस्तिनापुर लौटना अब संभव नहीं था। स्वर्ग का विशाल छिद्र बंद करने के लिए कानों का मांस मैंने एक इच्छुक को दे दिया है, उसके प्रश्न का उत्तर देना ही था, इसलिए मैंने कहा। मैं समझ नहीं सका, वह आश्चर्य से बोला। समझ सकते भी नहीं, मैं उसका समाधान नहीं कर सकता। भगवान परशुराम ने यदि पूछा तो मैं अपने को किस कुल का ब्राह्मण कुमार बताऊंगा? मन मार्ग ढूंढ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था। स्थिति ने मुझको एक असहाय अबला की लज्जा पर बहुत खरी खोटी सुनाने का पाप करवा लिया था, अब वह मुझसे असत्य बोलने का पाप भी करवाने को तैयार हो गई थी। साक्षात परशुराम के सम्मुख खड़ा होकर मैं असत्य बोलूँ या जिस मार्ग से आया हूँ उस मार्ग से रिक्त हस्त लौट जाऊँ? फिर समस्या, फिर संभ्रम, फिर जीवन अवरुद्ध करने वाली उलझन। इंद्र को कवच कुंडलों का दान देकर मिला हुआ पुण्य भगवान परशुराम से असत्य बोलते समय दग्ध हो जाने वाला था। फिर मैं सुत पुत्र ही रहने वाला था, जानता हूँ जैसा हूँ। महेंद्र पर्वत के शिखर से गिरने वाले जलप्रपात जैसे विचार मेरे मन पर गिरने लगे। क्या किया जाए, वापस लौटा जाए? हाँ, लौटना ही चाहिए, तो लौटता हूँ मैं। मैंने बीच में रुक कर अकृत वर्ण को आश्चर्य का आघात दिया। क्यों घबरा गए? भगवान परशुराम के आश्रम में प्रवेश करने के लिए सिंह की छाती होनी चाहिए। केवल भृगु कुल के ऋषि कुमार जैसी गोल मुख मुद्रा ही लेकर चला आया था क्या? वह आश्रम शिष्य होने के कारण निर्भयता से कहा गया। भृगु कुल, सिंह की छाती? नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र लिए बिना वापस नहीं जाना है। परशुराम को प्रतिज्ञा भंग करने का सामर्थ्य एक सुत पुत्र में है, इस बात को जगत अब देख लेगा। क्या कर लेंगे कोपिष्ट परशुराम असत्य बोलने वाले कर्ण का? जलाकर राख कर दें? परंतु राख भी कह देगी कि ब्रह्मास्त्र के लिए तरसने वाले एक सुत पुत्र ने भगवान परशुराम से ही उनकी प्रतिज्ञा भंग करा दी। मन का एक कोना नहीं कह रहा था, फिर भी मैंने पुनः चढ़ाई चढ़ने लगा। यदि परशुराम मुझसे मेरा कुल पूछेंगे तो भृगु कुल बता दूंगा, यदि नाम पूछेंगे तो भार्गव कह देना है, यह मैंने मन ही मन सोच लिया। अब चादरी में ज्योत्सना धवलित महेंद्र भयावह लगने लगा, क्योंकि भक्ष ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए वन्य पशु गर्जना करते हुए चादरी को भी कपाने लगे। महेंद्र पर अकृत व्रण की पांडुकुटी के सामने हम दोनों खड़े हो गए। उस समय रात का पूर्वार्ध व्यतीत हो चुका था। पूरा आश्रम छोटी बड़ी अनेक पर्णकुटियों से भरा हुआ था। परिसर के चारों ओर संरक्षण के लिए गोलाकार कटीली लताओं की सुदृढ़ बाड़ थी। सभी दिशाओं से जो आश्रम के मध्य भाग में पड़ता था ऐसा एक भव्य यज्ञ कुंड था। मैंने कितने ही यज्ञ कुंड देखे थे, पर इतना भव्य यज्ञ कुंड मैंने अन्यत्र कहीं नहीं मिला था। एक कोने में गायों का एक लंबा खरक तटस्थ खड़ा था। महेंद्र पर्वत पर चढ़कर थकी हुई गायों उस खरक में बैठे हुए शांतिपूर्वक शायद रोथ कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में रह रहकर आने वाले उनके गले की घंटियों की आवाज से नीरव शांति भंग हो रही थी। सभी पर्णकुटियाँ पैर सिकोड़ कर विश्राम करने वाले हाथियों के झुंड जैसी दिखाई दे रही थी। शिष्यगणों के निद्राधीन होने के कारण कहीं समय का प्रकाश भी नहीं था। चंद्र के रूपाले रस का घट आकाश रूपी महापुरुष पृथ्वी के सर्वांग पर उलेड़ रहा था। आश्रम के चारों ओर बाढ़ के कूड़े करकट में झींगुर लयबद्ध किरकिर कर रहे थे। केवल एक ही पर्णकुटी के यज्ञ कुंड में तड़तड़ाने वाली चिंगारियां बाहर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी और स्पष्ट मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। अर्धरात्रि हो गई थी, फिर भी कोई जागृत था, ध्यानपूर्वक ध्यान कर रहा था। कौन है इस पर्णकुटी में? मैंने अकृत रण के पीछे पीछे उसकी पर्णकुटी में प्रवेश करते हुए पूछा। भगवान कल पूर्णिमा है, अपना वरुण व्रत पूर्ण करने के लिए उनको प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पूर्व रात्रि को इस प्रकार यज्ञ कुंड के सामने बैठकर सावृत्य मंत्र का गायत्री छंद में अखंड पुरस्सरण करना पड़ता है। तदुपरांत दूसरे ही दिन में महेंद्र से उतर कर नीचे कलिंग राज्य में जाते हैं। पूर्व समुद्र के फेनिल कटी पर्यंत जल में खड़े होकर दिन भर सूर्य को अर्घ्य दान करते हैं। उनके दर्शन करने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को कलिंग जन सागर किनारे टूट पड़ते हैं। अनेक बार मैं भी उनके साथ सागर तट पर गया हूँ, मुझको भी एक आध बार यह अवसर मिल जाएगा। दर्भ के दो छोटे छोटे बिस्तर बिछाकर उन पर दो कंबल रखता हुआ अकृत व्रण बोला, सत्यसेन शोण अश्वत्थामा दुर्योधन आदि अनेक व्यक्ति मेरे जीवन में आए थे, उनमें अकृत व्रण भी सम्मिलित हो गया। फलाहार का दर्भ की उस शीतल सैया पर शरीर को विश्रांत करते हुए मेरे मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, भगवान परशुराम ने यदि कल ही मुझे कलिंग राज में चलने के लिए कहा तो क्या होगा, क्या उत्तर दिया जाए उनको। सभी कलिंग जन मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ यह कलिंग राज में कैसे जाया जाए, विचार करते करते ही निद्राधीन हो गया। महल में मृदु शैया पर भी न आई होगी इतनी शांत थी भगवान परशुराम के पर्णकुटि की प्रथम रात्रि की वह निद्रा। 4 प्रातःकाल हुआ, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम शिष्यगणों के मुख से बाहर निकलने वाले प्रार्थना के मधुर अलापों से मैं जागृत हो गया। अनेक दैनिक कृत्य निपटाकर सबके साथ भगवान परशुराम के पर्णकुटि के सम्मुख उपस्थित खड़ा हो गया। सूर्योदय हुआ और जैसे गुफा से अयारधारी सिंह बाहर निकलता है, वैसे ही दाढ़ीधारी परशुराम पर्णकुटि से बाहर निकले। उनके कंधे पर रखे हुए परशु का तीक्ष्ण फलक भल फल चमचमा रहा था। दान सत्र के साथ तथा दिग्विजय के समय यूँ मैंने अनेक ऋषि देखे थे। पांडव के राजसूयज्ञ में धौम में धनंजय संदीपनी कण्व ब्रह्म गार्गी जैसे महान तपस्वी दिखाई दिए थे। कोपिष्ठ के रूप में प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा से भी मिल चुका था, परंतु कंधे पर चमचमाते हुए परशु को धारण करने वाला किट्ट काली सघन दाढ़ी वाला इतना भव्य ऋषि मैं आज प्रथम बार ही देख रहा था। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कैलाश छोड़कर जटाधारी भगवान शंकर ही उस पर्णकुटि में बाहर मिले हों। इन शंकर ने मस्तक पर से चंद्रकला निकालकर उसे त्रिशूल दंड में लगाकर परशु के रूप में अपने सशक्त एवं विशाल कंधे पर रख लिया हो। नेत्र इतने तेजस्वी थे मानव विश्व को भेद देंगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से भी अधिक मिलते जुलते थे। पूर्व सागर की ओर जाने के लिए मंद मंद चरण निक्षेप करते हुए वे चलने लगे। पुष्पों की अंजलियां उनके चरणों पर अर्पित कर उनके श्रद्धावान शिष्य धड़ाधड़ उनके सामने साष्टांग प्रणाम करने लगे। सबसे अंत में मैं खड़ा हुआ। सामने आते ही मैंने उनके चरणों को स्पर्श कर उनके चरण धूल सिर से लगाए। वह क्षण मुझे बड़ा भाग्यशाली लगा। कौन है तुम? जैसे गदा पर गदा टकराती है ऐसी थी आवाज़ उनकी। मैं भार्गव भृगुकुल का। मेरा अंतर मन रथ के नीचे आए हुए रक्त रंजित हाथ की तरह लज्जा से स्याह पड़ गया था। गहन कोने में कोई सत्यप्रिय कर्ण तिलमिला रहा था। यहाँ किस लिए आया है? ब्रह्मास सीखने के लिए। बड़ी देर तक आश्चर्ययुक्त दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए गुरुदेव ने अपने नेत्र मूंद लिए। क्षण भर दो शब्द क्षण बीतते ही पुनः तीव्र गति से देखते हुए बोले, आश्रम के नियमों का कठोर पालन करना पड़ेगा। कर लेगा? आज्ञा गुरुदेव। ठीक है जा, प्रवास से मलिन में वस्त्रों को स्वच्छ धोकर तैयार रह। वापस आते ही मैं तुझे आज शुभ मुहूर्त में ब्रह्मास्त्र के पूर्व के नवन मंत्र सिखाऊंगा। धीर गंभीर प्रक्षेप करते हुए वह विशाल का जगदम्नि पुत्र आश्रम से बाहर निकला। चमचमाता परशु परावर्तित किरणों के वलय फेंकता हुआ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। साथ साथ अकृत व्रण भी चलने लगा। उनके पृष्ठभाग की ओर देखते हुए मेरे मन के किसी गहन कोने में पराभव की प्रतीति कसक रही थी, ऐसा मुझे आभास हुआ। जीवन में पहली ही बार कहीं कोई भयंकर भूल हो रही थी। जीवन जिम बाण की तरह टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, ऐसा लगने लगा। 5 एक के बाद एक दिन बीत रहे थे। राजभवन में योद्धाओं के जीवन का अभ्यस्त इतनी जल्दी नहीं हुआ था जितनी जल्दी आश्रम के शिष्य जीवन का अभ्यस्त हो गया। किसी की भी स्मृति मेरे मन को प्रक्षुब्ध नहीं कर सकती थी। ब्रह्मास्त्र के महामंत्र आधे से अधिक कंठस्थ हो गए। ऐसा हो सकता है कि उसके परिणाम स्वरूप ही हों, परंतु मन शांत हो गया था। राजभवन की ओर लौटने की इच्छा नहीं होती थी। जीव मुक्ति के लिए अहर्निश प्रयत्न करने वाले असंख्य सहकारियों के सहवास में घटिकाएं और पल उज्ज्वल होते जा रहे थे। अकृत वरण का साथ तो ठीक अश्वत्थामा का स्मरण करा देने वाला था। जीवन के सभी अंगों का उसने गहन अध्ययन किया था। उसकी बातें सुनते समय मुझे काल का भान ही नहीं रहता था। महीने के अंत में एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन सभी शिष्यों को गुरुदेव से कोई भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता था। जीवन की यात्रा में चलते हुए मनुष्य सभी निर्णय केवल अपने ही बुद्धि के बल पर सार्थक कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए उस दिन अनेक विषयों पर चर्चा होती थी, शंकाएं रखी जाती थी। जो कुछ मैं आज तक सीख नहीं पाया था वह मेरी चर्चाओं से सीखने को मिल गया। ऐसे ही एक निश्चित दिन मैंने भगवान परशुराम से प्रश्न पूछा, भगवान सबसे श्रेष्ठ आनंद क्या है? पहले तो ही बता। उन्होंने मुझे उल्टे मुझे से प्रश्न कर दिया। दान का, मेरे आगे कवच कुंडलों के दान का प्रसंग खड़ा हो गया। नहीं, दान में भी मैंने किसी को दान दिया है अहंता की यह प्रतीति रह जाती, इसीलिए पहले यह अच्छी तरह परख लेना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है। भार्गव, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय, गुरुदेव। मैं बोला, नहीं, सबसे ऊंचा पर्वत है मन का। मन की ऊंचाई के आगे हिमालय भी ठीक रहा है, इसीलिए मन सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसा सुदृढ़ मन बलवान शरीर में ही हो सकता है। भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। बलहीन को न आनंद है, न सुख है, न मुक्ति। इसीलिए अपने आश्रम में शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। यह ज्ञान मानवता के संहार के लिए नहीं है, परंतु शस्त्रों का यह ज्ञान मानवता के उद्धार में बाधा डालने वाले क्रौर्य का संहार करने के लिए निश्चय ही है। तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र विद्या सिखा रहा हूँ वह भी इसीलिए। गुरुदेव, जगत में मानव का भी उचित अस्तित्व अंततः क्यों? केवल कोटि कोटि वर्षों तक जीने के लिए ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद क्या है यह जान लेना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं मन का वह आनंद ही अंतिम है क्या? नहीं, उससे भी अधिक श्रेष्ठ आनंद है। वह अंतिम ही नहीं बल्कि अखंड आनंद भी है। वह आनंद मन के वेष्टन में अवगुंठित बैठे हुए आत्मा का है। हम कौन हैं, इस विश्व में क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, यह चराचर विश्व किस सूत्र में पिरोया हुआ है? अपने आश्रम की गायों के ये सुंदर बछड़े किस लिए उछलते कूदते हैं? एक दिन का ही जिनका जीवन है, वे फूल की भी लताओं की शाखाओं पर हंसते हंसते क्यों डोलते हैं? मेघ क्यों गरजते हैं? पवन किस कारण बहता है? वर्षा किसके कारण होती है? संपूर्ण विश्व का एक एक कण चेतना के प्रमण गीत गाता हुआ अविरत कैसे गतिमान रहता है? असीम जीव सृष्टि का यह अखंड अक्षय दीप कौन सा जीवन रस लेकर सतत जलता रहता है? यह सब जानने के लिए, यह सब देखने के लिए एक अद्भुत सुप्त नेत्र अपने इस शरीर में ही है। उसका नाम है आत्मा। इच्छा शक्ति के बल पर जिस समय यह नेत्र हम खोल लेते हैं, उस समय सभी समस्याएं मिट जाती हैं। समस्त विश्व एक दिखाई देने लगता है। महाभयानक प्रतीत होने वाले विध्वंस से दुख नहीं होता। महान निर्माण को मूर्त रूप देख कर होने वाला मिथ्या आह्लाद विशेष नहीं रहता, शेष रहता है केवल प्रकाश, सूर्य किरणों जैसा तेजस्वी प्रकाश। इसीलिए आत्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है। उन्होंने अपने विशाल नेत्र एकदम मूंद लिए, मानो उस साम्राज्य प्रकाश के साम्राज्य में जाने के लिए उनको तीव्रतम आकर्षण लग रहा हो। उनका नेत्र मूंद लेना प्रश्न बंद कर देने का संकेत है। हम यह अच्छी तरह जान गए थे। सबने हाथ जोड़े, ओम ईशावास्यम इदम्। प्रार्थना की गंभीर ध्वनि आश्रम के परिसर के बाहर आकर महेंद्र के कोने कोने में गुंजित होने लगी।